एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं व्यक्तिगत और दिल को छू लेने वाले सफर पर निकल रहे हैं, मिशेल ज़ोनर की 2021 में आई किताब क्राइंग इन एच मार्ट।
जी,
मिशेल ज़ोनर को वैसे कई लोग इंडी रॉक बैंड जापानीज ब्रेकफास्ट की आवाज के तौर पर जानते हैं, उनकी मुख्य गायिका और गीतकार, लेकिन ये किताब ये कुछ और ही है।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक संगीतकार की कहानी नहीं है। मिशेल ज़ोनर, जिनका जन्म 1989 में हुआ, उनकी माँ कोरियाई थीं और पिता श्वेत अमेरिकी, तो ये संस्मरण है उनके मतलब मिश्रित पहचान के साथ बड़े होने का। अपनी माँ के साथ उनका जो एक जटिल सा रिश्ता था उसका, और शायद सबसे ज्यादा भोजन के जरिए, खाने के जरिए अपनी कोरियाई जड़ों से, अपनी विरासत से जुड़ने की एक बहुत ही गहरी और ईमानदार कोशिश है।
और किताब का नाम ही देखिए, क्राइंग इन एच मार्ट, ये कितना पावरफुल है। शुरुआत ही होती है इस वाक्य से, जब से मेरी माँ की मृत्यु हुई है मैं एच मार्ट में रोती हूँ। एच मार्ट, वो जानी मानी कोरियाई अमेरिकी सुपरमार्केट चेन।
हाँ, ये लाइन तो बस सीधे दिल पर लगती है, आपको फौरन उनकी दुनिया में खींच लेती है।
सही कहा।
और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ दुख या शोक का बयान नहीं है, ये पहचान की तलाश भी है। अपनी संस्कृति को समझना, उसे सहेजने की कोशिश करना, और माँ बेटी के रिश्ते की जो परतें होती है ना, उनको समझने की कहानी है।
और आज के समय में ये और भी जरूरी लगती है ना?
बिल्कुल, आजकल हम मिश्रित पहचान, प्रवासी अनुभव, खासकर एशियाई अमेरिकी आवाजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस लिहाज से ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ये खाने और संस्कृति के नज़रिए से दुख को देखने का एक बहुत ही अलग, बहुत मार्मिक तरीका पेश करती है।
तो चलिए मिशेल ज़ोनर की इस यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत कहाँ से करें, उनके बचपन से?
हाँ जरूर, उनका जन्म तो सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था, लेकिन वो पली बनी यूजीन ओरेगन में, और वो जगह उस समय ज्यादातर श्वेत लोगों का समुदाय था।
तो वहां उन्हें कैसा महसूस होता होगा, मतलब एक अलग माहौल में?
हाँ यही बात है, उन्हें अक्सर अकेलापन महसूस होता था, जैसे वो बाहर की हों। स्कूल में भी वो बताती हैं कि वो गिने चुने एशियाई बच्चों में से एक थीं, और फिर घर पर माँ चोंगमी के साथ उनका रिश्ता, वो काफी कह सकते हैं उतार चढ़ाव वाला था।
किस तरह का?
माँ सख्त थीं, आलोचना भी करती थीं, लेकिन साथ ही उनमें एक जबरदस्त देखभाल करने वाला, एक प्रोटेक्टिव प्यार भी था, जो शायद शब्दों से कम और कामों से ज्यादा जाहिर होता था।
हाँ, जैसे वो खाने वाली बात आपने कही थी, किताब में ऐसे कई पल हैं जहाँ वो बताती हैं कि डांटने के बाद माँ चुपचाप उन्हें कटा हुआ एशियाई नाशपाती दे देती थी।
बिल्कुल, वो एक तरह की बिना शब्दों की भाषा थी। माँ की इच्छा थी कि मिशेल एक मतलब आदर्श कोरियाई बेटी बने, पर मिशेल अपने अमेरिकी दोस्तों की तरह बनना चाहती थी। ये कश्मकश थी, ये तो कई प्रवासी परिवारों में देखने को मिलता है।
सही कहा। और ये कश्मकश गर्मियों में और बढ़ जाती थी। जब वो लोग सियोल जाते थे, ये यात्राएं एक तरफ तो उन्हें अपनी कोरियाई पहचान, परिवार और खाने से जोड़ती थीं, उनकी विरासत की नींव यहीं पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ, खासकर जब वो किशोरी थीं, तो ये यात्राएं तनाव का कारण भी बनती थीं। उन्हें लगता था कि वो न तो पूरी तरह अमेरिकी है न पूरी तरह कोरियाई, वो कहीं बीच में फंसी हुई हैं।
और फिर किशोरावस्था आई तो माँ के साथ मतभेद शायद और बड़े होंगे।
हाँ बिल्कुल, इसी दौरान संगीत उनकी जिंदगी में आया। पंक रॉक, इंडी रॉक, ये उनके लिए एक तरह की पनाहगाह बना, अपनी पहचान जाहिर करने का तरीका, और शायद थोड़ा विद्रोह भी, जिसे उनकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी।
समझ सकती हूँ। तो फिर वो यूजीन से बाहर निकली। जी, यूजीन के माहौल और माँ की अपेक्षाओं से थोड़ी दूरी बनाने के लिए वो ईस्ट कोस्ट चली गई, पेंसिल्वेनिया में ब्रिन मार कॉलेज। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी, आज़ादी मिली, संगीत में और ज्यादा सक्रिय हुई, बैंड वगैरह बनाए।
और माँ के साथ रिश्ता?
वो अब लंबी दूरी का हो गया, छुट्टियों में घर आना अक्सर थोड़ा तनाव भरा रहता था। कॉलेज में ही उनकी मुलाकात पीटर से हुई, जिनसे बाद में उनकी शादी हुई।
कॉलेज के बाद जिंदगी कैसी रही, क्या सब आसान हो गया?
नहीं, आसान तो नहीं था। कॉलेज के बाद वो फिलाडेल्फिया में रही, वहाँ वेटर्स का काम किया, अपने बैंड लिटिल बिग लीग के साथ संगीत की दुनिया में एक जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष किया। वो अपनी कलात्मक पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी मुश्किलों के बावजूद।
और फिर वो मोड़ आया जिसने सब बदल दिया।
हाँ, जब वो 25 साल की थी, उनकी माँ का फोन आया, पता चला कि उन्हें स्टेज 4 स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। ये एक बहुत ही गंभीर किस्म का कैंसर होता है, और ये खबर ये उनकी जिंदगी का एक निर्णायक पल बन गई।
ओह, ये तो बहुत बहुत चौंकाने वाला रहा होगा। उन्होंने क्या किया?
उन्होंने फौरन फैसला लिया, फिलाडेल्फिया में अपना सब कुछ, अपना करियर, अपनी आज़ादी, अपनी जिंदगी सब पीछे छोड़ा और यूजीन लौट आईं अपनी माँ की देखभाल करने के लिए। वो उनकी प्राइमरी केयर गिवर बन गई।
ये कितना बड़ा बदलाव रहा होगा, एक युवा लड़की जो अपनी राह बना रही थी, अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी।
बहुत बड़ा, और इस मुश्किल वक्त ने माँ बेटी के रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया। जो पुरानी कड़वाहटें थीं, शिकायतें थीं, वो सब जैसे पीछे छूट गईं। एक नई तरह की नज़दीकी, एक गहरी समझ पैदा हुई। माँ की देखभाल करते हुए मिशेल ने उन्हें सिर्फ अपनी माँ के तौर पर नहीं देखा, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखा, उनकी कमजोरियों, उनकी जरूरतों के साथ।
और इसी मुश्किल दौर में उनकी शादी भी हुई है ना?
हाँ, वो भी एक बहुत मार्मिक घटना थी। माँ की इच्छा थी कि वो मिशेल को शादी की जोड़े में देखें। समय बहुत कम था, तो मिशेल और पीटर ने बहुत जल्दी में घर पर ही एक छोटा सा समारोह किया ताकि माँ शामिल हो सकें। वो एक ऐसा पल था जिसमें खुशी भी थी और गहरा दुख भी। माँ की इच्छा पूरी करने की खुशी और उनकी बिगड़ती हालत का दुख।
माँ के जाने के बाद मिशेल के लिए बहुत मुश्किल दौर रहा होगा।
यकीनन, वो गहरे दुख में डूब गईं। फिलाडेल्फिया वापस तो आ गईं, लेकिन उनकी दुनिया जैसे उजड़ सी गई थी। और यहीं इसी दुख की गहराई से कुछ नया निकला।
उनका संगीत?
हाँ, इसी हालत में उन्होंने अपने नए सोलो प्रोजेक्ट जैपनीज ब्रेकफास्ट के लिए गाने लिखने शुरू किए। उनका पहला एल्बम साइकोपॉम्प, जो 2016 में आया, वो सीधे सीधे उनके दुख, उनकी हानि, माँ की यादों से जुड़ा था। और हैरानी की बात यह है कि ये एल्बम काफी सफल रहा।
अच्छा?
हाँ, इसने उनके संगीत करियर को वो पहचान दी जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रही थीं। ये एक अजीब सी विडंबना है कि उनकी कलात्मक सफलता उनकी सबसे बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी से जुड़ी हुई थी।
ये वाकई में असाधारण है कि कैसे दुख भी रचनात्मकता का स्रोत बन सकता है। माँ के जाने के बाद क्या उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी कोरियाई पहचान का जो सबसे मजबूत लिंक था वो टूट गया?
बिल्कुल, यही एहसास उनके लिए एक नई प्रेरणा बना, अपनी जड़ों को फिर से खोजने की, उन्हें सहजने की। उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से कोरियाई व्यंजन बनाना सीखा, खासकर वो चीजें जो उनकी माँ बनाती थीं।
कैसे?
उन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया, एक कोरियाई शेफ हैं मानची, उनके वीडियो देखकर। ये उनके लिए सिर्फ खाना बनाना सीखना नहीं था, उन्होंने कोरियाई भाषा सीखने की भी कोशिश की। अपने पिता के साथ सियोल गईं अपनी माँ की दुनिया को और करीब से समझने के लिए।
तो आज हम मिशेल ज़ोनर को एक सफल संगीतकार और एक बेस्ट सेलिंग लेखिका के रूप में जानते हैं, और ये किताब क्राइंग इन एच मार्ट एक तरह से उनकी माँ की यादों को एक स्थायी घर देने का उनका तरीका है।
सही कहा, उनकी विरासत सिर्फ उनकी कला में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने दुख को स्वीकार किया, उसे गले लगाया और उसके साथ जीना सीखा।
अगर हम उनके जीवन और इस किताब से उनके मूल दर्शन को समझने की कोशिश करें तो क्या बातें सामने आती हैं। मुझे एक बात बहुत छू गई कि प्यार अक्सर शब्दों से ज्यादा कामों में दिखता है, खासकर खाना खिलाने में।
बिल्कुल, ये उनकी माँ का तरीका था प्यार जताने का, जिसे मिशेल ने बाद में बहुत गहराई से समझा और सराहा। बचपन में शायद उन्होंने माँ से आई लव यू कम सुना हो, लेकिन उन्हें हमेशा प्यार से बना पौष्टिक खाना मिला। ये एक नॉन वर्बल लव लैंग्वेज थी।
और यादों को लेकर उनका क्या नजरिया है?
वो मानती हैं कि यादों को सक्रिय रूप से सहेजना पड़ता है। वो कहती हैं कि यादें एक नाजुक बगीचे की तरह हैं, अगर आप उन्हें सींचेंगे नहीं, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो वो मुरझा जाएंगे। उनका लिखना, खाना बनाना, तस्वीरें लेना, ये सब उस स्मृति बगिया को जिंदा रखने के उनके तरीके हैं।
और पहचान, खासकर उनकी मिश्रित पहचान के संदर्भ में?
हाँ, ये बहुत अहम है। वो पहचान को कोई पत्थर की लकीर नहीं मानती। उनके लिए पहचान एक मोज़ेक की तरह है, जिसे हम अपने अनुभवों, अपने रिश्तों, अपनी भाषा और हाँ, अपने भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों से लगातार बनाते रहते हैं। उनका पूरा जीवन इसी उधेड़बुन का गवाह है, कभी अमेरिकी न महसूस करना, कभी कोरियाई न महसूस करना, और आखिरकार ये समझना कि उनकी पहचान इसी मिश्रण में है और यही उसकी खूबी है।
उनकी प्रेरणाएं भी वक्त के साथ बदली हैं ना? शुरू में शायद यूजीन से दूर जाना, संगीत में नाम कमाना।
हाँ, शुरुआत में शायद यही था, माँ की आलोचना से बचना, अपनी जगह बनाना, लेकिन माँ की बीमारी ने सब बदल दिया। तब उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई माँ की देखभाल करना, उनके साथ जो भी वक्त बचा है उसमें रिश्ते को गहरा करना।
और माँ के जाने के बाद?
माँ के जाने के बाद उनकी प्रेरणा का स्रोत बना माँ की यादों को जिंदा रखना, अपनी कोरियाई विरासत को फिर से अपनाना, उसे समझना, उसका सम्मान करना, उनका खाना बनाना, उनका लिखना, ये सब उसी प्रेरणा का नतीजा है।
जिस तरह से वो मुश्किलों का सामना करती हैं, उसमें भी एक खास बात नजर आती है। वो बहुत ईमानदारी से लिखती हैं, बिना किसी लाग लपेट के।
हाँ, कच्ची ईमानदारी। वो दुख, देखभाल की थकान, उलझने, गुस्सा, सब कुछ बहुत बेबाकी से बयान करती हैं। लेकिन वो सिर्फ भावनाओं में बहती नहीं रहती, वो हमेशा कुछ करती हैं, एक्शन पर जोर देती हैं। हानि के सामने वो कुछ ठोस करती हैं, चाहे वो माँ के लिए खाना बनाना हो, शादी की तैयारी करना हो, या फिर अपने दुख को संगीत और शब्दों में ढालना हो। क्रिएटिविटी उनके लिए सिर्फ करियर नहीं, बल्कि जीने का, मुश्किलों से जूझने का एक तरीका है।
उनकी जिंदगी में कई अहम मोड़ आए। अगर तीन सबसे खास की बात करें तो पहला तो शायद माँ के कैंसर का पता चलना ही होगा।
बिना किसी शक के, वो एक फोन कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। फिलाडेल्फिया में अपनी जिंदगी जी रही एक युवा लड़की अचानक खुद को ओरेगन में पाती है, अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ की देखभाल करते हुए। ये मोड़ इसलिए इतना जरूरी था क्योंकि इसने माँ बेटी के रिश्ते की सारी बाहरी परतें हटा दी।
मतलब
जो छोटी मोटी शिकायतें थीं, दूरियां थीं, वो सब बेमानी हो गईं। सामने सिर्फ एक बुनियादी गहरा बंधन रह गया, और समय की कमी ने उन्हें एक ऐसी नज़दीकी दी, एक ऐसी समझ दी जो शायद सामान्य हालात में कभी नहीं बन पाती।
और इसने मिशेल को व्यक्तिगत तौर पर कैसे बदला?
इसने उन्हें रातों रात बदल दिया। वो अपने सपनों पर केंद्रित एक युवा से एक समर्पित देखभालकर्ता बन गई, जिम्मेदार। उन्होंने अपनी माँ को पहली बार माँ की भूमिका से अलग एक कमजोर, जरूरतमंद इंसान के तौर पर देखा। ये अनुभव उनके लिए बहुत विनम्र करने वाला था, जिसने उन्हें परिपक्व बनाया। इसी ने उनके रिश्ते की सबसे गहरी समझ की नींव रखी।
दूसरा, जाहिर है माँ की मृत्यु।
हाँ, ये किताब की केंद्रीय घटना है, एक भावनात्मक भूकंप। जिस नुकसान का डर उन्हें हमेशा सताता था, वो अब हकीकत बन गया था। ये सिर्फ एक माँ को खोना नहीं था, ये उनकी कोरियाई विरासत से उनका सबसे अहम, सबसे व्यक्तिगत जुड़ाव टूटना था। माँ ही वो पुल थी जो उन्हें उनकी जड़ों से जोड़ती थी।
इस घटना ने उन्हें किस तरफ मोड़ा?
इसने उन्हें आत्मखोज की एक नई यात्रा पर भेज दिया। अब सवाल ये था कि माँ के बिना अपनी कोरियाई संस्कृति से कैसे जुड़ा जाए। ये उनके जीवन का मुख्य संघर्ष बन गया, और इसी संघर्ष और दुख ने उनकी कला को नई दिशा दी। उनका संगीत यानी जापानीज ब्रेकफास्ट और उनका लेखन दोनों इसी गहरे अनुभव से निकले। दुख उनकी रचनात्मकता का एक अहम हिस्सा बन गया।
और तीसरा मोड़, जो शायद उतना नाटकीय ना लगे लेकिन आपने बताया कि वो बहुत महत्वपूर्ण था, यूट्यूब पर मानची के वीडियो देखकर कोरियाई खाना बनाना सीखना।
हाँ, ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका असर बहुत गहरा था। सोचिए, दुख की उस गहरी अवस्था में जब वो माँ की कमी हर पल महसूस कर रही थी, तब मानची के वीडियो उनके लिए एक तरह की जीवन रेखा बने। मानची, जिनसे वो कभी मिली भी नहीं, उनकी एक अप्रत्यक्ष गुरु बन गई।
कैसे?
लगन से उनकी रेसिपी देखना, एक एक चीज जुटाना और फिर अपने हाथों से माँ के पसंदीदा व्यंजन बनाना। ये सिर्फ खाना पकाना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था।
हाँ, ये एक तरह का रिचुअल बन गया होगा।
बिल्कुल, ये निष्क्रिय शोक से सक्रिय स्मरण की तरफ एक कदम था। ये अपनी माँ की उपस्थिति को, उनकी यादों को अपनी रसोई में अपने हाथों से वापस लाने का एक ठोस तरीका था। किमची या जैपचे जैसे मुश्किल व्यंजन बनाना सिर्फ खाना बनाना सीखना नहीं था, ये प्यार का काम था, अपनी विरासत पर दावा करने का तरीका था, और ये ऐलान था कि वो माँ की विरासत को मरने नहीं देंगी। इसने उन्हें ताकत दी, एक मकसद दिया।
इस पूरी कहानी से ऐसे कई सबक मिलते हैं जिससे हम सब जुड़ सकते हैं, जैसे माँ बेटी के रिश्ते की जटिलता, उसमें प्यार भी है, टकराव भी, गलतफहमियां भी, और आखिरकार एक गहरी समझ भी। ये बहुत ही यूनिवर्सल अनुभव है।
हाँ, बिल्कुल, और दुख की प्रकृति को भी ये किताब बहुत अच्छे से दिखाती है कि दुख कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक करना है या कोई स्टेज जिसे पार करना है। ये एक स्थायी उपस्थिति बन जाता है जिसके साथ आपको जीना सीखना होता है, और ये मुमकिन है कि दुख के साथ साथ जिंदगी में खुशी, सफलता और प्यार भी हो।
पहचान की तलाश का मुद्दा भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो मिश्रित पृष्ठभूमि से हैं या प्रवासी हैं। अपनी जड़ों को खोजना, ये समझना कि घर कहाँ है, अपनेपन की भावना तलाशना, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। ज़ोनर ने इसे बड़ी ईमानदारी से दिखाया है।
और हाँ, भोजन की शक्ति, ये किताब इस बात का सबूत है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये प्यार जताने का जरिया है, यादों को सहेजने का तरीका है, संस्कृति को आगे बढ़ाने का माध्यम है और समुदाय बनाने का साधन है। कई संस्कृतियों में किसी को प्यार से खाना खिलाना शायद अपनेपन का सबसे गहरा इजहार है।
एक और बात जो मुझे छू गई कि हम अक्सर अपने माता पिता को पूरी तरह से उनके अपने संघर्षों और सपनों के साथ तभी समझ पाते हैं जब शायद उनके साथ वक्त बहुत कम बचा होता है।
बहुत सही कहा आपने, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। और आज के श्रोताओं के लिए ये कहानी कई लेवल पर प्रासंगिक है। ये एशियाई अमेरिकी पहचान, प्रतिनिधित्व पर जो आजकल बातें हो रही हैं, उससे सीधे जुड़ती है। और साथ ही हम सब हाल ही में एक मुश्किल दौर से गुजरे हैं, महामारी, सामूहिक हानि, तो दुख और उससे उभरने की ये व्यक्तिगत कहानी बहुत से लोगों को अपनी सी लगेगी।
ये हमें याद दिलाती है कि इस तेज रफ्तार दुनिया में परिवार, साझा रिवाजों और यादों को सहेज कर रखना कितना जरूरी है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत से तीन मुख्य बातें निकालना चाहें तो पहली एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि होगी।
वो क्या है?
वो है दुख का विरोधाभास। ज़ोनर की कहानी दिखाती है कि अक्सर वही चीजें जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे माँ की यादें, एच मार्ट जैसी जगहें, माँ के हाथ का स्वाद, आखिरकार वही हमें सबसे ज्यादा सुकून और जुड़ाव भी महसूस करा सकती हैं। दुख से आगे बढ़ने का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि उन दर्द भरी यादों को अपने जीवन और पहचान का हिस्सा बनाना सीखना है, उन्हीं में ताकत खोजना है।
ये बहुत गहरी बात है। और दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि,
वो ये कि भोजन सिर्फ भोजन नहीं, ये एक बुनियादी और बहुत शक्तिशाली भाषा है। ज़ोनर के अनुभव में कोरियाई खाना सिर्फ स्वाद नहीं था, ये माँ और बेटी के बीच की अनकही बातें, प्यार, गुस्सा, उम्मीदें, निराशा व्यक्त करने का जरिया बन गया। और माँ के जाने के बाद यही खाना उनकी संस्कृति, उनके इतिहास और उनकी पहचान को समझने और उसे फिर से पाने का एक तरीका बना। एक रेसिपी सिर्फ निर्देशों की लिस्ट नहीं होती, वो एक कहानी होती है, एक विरासत होती है।
बिल्कुल। और तीसरी एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि जिसे हम सब अपनी जिंदगी में लागू कर सकें,
वो है संरक्षण की तात्कालिकता। मतलब हमें अपने प्रियजनों की कहानियों को सिर्फ जानना या रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से जीना चाहिए, उनकी परंपराओं को अपनाना चाहिए, उनकी रेसिपी बनाना सीखना चाहिए, उनके इतिहास को समझना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। ये सिर्फ भावुक होने की बात नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक और व्यक्तिगत जड़ों को मजबूत करने का, पीढ़ियों के बीच पुल बनाने का एक जरूरी काम है। मिशेल ज़ोनर हमें याद दिलाती हैं कि जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो यादें और विरासत बची हैं उन्हें सहेज कर, उन्हें जीकर हम उस जुड़ाव को जिंदा रख सकते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।